ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
आज यानी 3 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। ये खास दिन समाज में दिव्यांगजनों की हिस्सेदारी, उनके अधिकार और उनकी क्षमता और सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत अहम है। आज इसी अवसर पर भारत में भी दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, उनकी भागीदारी को लेकर एक विशेष आयोजन भी हुआ। तो हम आज के इस विशेष दिन पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को लेकर आज एक विशेष बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका।
धन्यवाद।
सबसे पहले हम आज के आयोजन से ही शुरू करें। किस तरह से आज का जो आयोजन रहा, कैसे आज के आयोजन को देखेंगे?
इस दिन पूरी दुनिया में डिसेबिलिटी रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स मनाए जाते हैं और हमारे देश में ट्रेडिशन रहा है कि एक नेशनल अवार्ड्स की प्रथा रही है, जिसमें हमेशा मतलब दशकों से राष्ट्रपति जी उसका हमेशा उनके हाथों से ये अवार्ड दिए जाते हैं। आज भी 33 लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को अवार्ड दिए गए और जैसा आपने देखा कि बहुत ही एक उसमें भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। एक तो पूरा नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सब तरफ के लोग थे। एज में भी 13 साल से लेकर 75 इयर्स तक के थे और जो अवार्ड्स की डाइवर्सिटी थी आज आपने सबने देखा ही, इट वाज रियली गुड।
एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, इस वर्ष का ये विषय रहा है दिव्यांगजन दिवस का। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि समावेशी भविष्य को बनाने के लिए जो भारत सरकार के प्रयास हैं या आपके विभाग के प्रयास हैं, जैसे 2015 में शुरू हुआ सुगम्य भारत अभियान, तो किस तरह से ये इनिशिएटिव्स एक समावेशी समाज बनाने की ओर अग्रसर हैं और अब तक हमें कितनी सफलता मिली है?
देखिए, जो सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल चीज है वो है सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करना कि दिव्यांग लोग कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं। अगर मेजोरिटी लोग आज भी माने कि नहीं, दिव्यांग लोग का बस थोड़ा बहुत ध्यान रख लो, कुछ खास अचीव नहीं कर सकते, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और यही सबसे मुश्किल काम है और वो सतत चलता रहेगा। दूसरा, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सुगम्य भारत के भी आज 9 साल हो रहे हैं, उस पर बहुत सारा काम हुआ है, अभी काफी होना भी बाकी है। एजुकेशन में बहुत तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, बट सबसे जो कठिन काम है वो पूरी सोसाइटी को समझना कि दिव्यांग लोग सोसाइटी का हिस्सा हैं, परिवार का हिस्सा हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो जिसको डिसेबिलिटी हो, आसपास के पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है, बच्चा है, उसका ठीक से हमने बिहेव करना, उनके साथ उनको एनकरेज करना, ये चीज सबसे ज्यादा मुश्किल है। बिल्डिंग सुगम्य बनाना, वेबसाइट सुगम्य बनाना, वो काम हो जाएंगे, उस पर प्रोग्रेस हो रही है। सबसे मुश्किल सोसाइटल एटीट्यूड्स है और आज भी जैसे अवार्ड में आपने देखा कई लोग ऐसे थे जो सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करने में लगे हुए हैं। तो ये दुनिया भर का, ये सिर्फ अपना ही विषय नहीं है, दुनिया भर में यही चर्चा है दिव्यांग जन में, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि हाउ दे गेट मोर डिग्निफाइड ट्रीटमेंट।
इन वर्षों में सरकार का फोकस इस बात पर भी रहा है कि साइन लैंग्वेज को लेकर एक व्यापक तंत्र बनाया जाए। कुछ अहम योजनाएं और पहल इस हवाले से आप हमें बताना चाहेंगे कि बीते वर्षों में किस तरह से जो श्रवण दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको लेकर जो एक सुलभ माहौल बनाया जा रहा है, वो कैसे आने वाले समय में एक बहुत अच्छा और समावेशी भविष्य देगा?
हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड में फुल्ली डेफ लोग भी आ जाते हैं, जिसमें से बहुत कम को कॉकलियर इम्प्लांट वगैरह के साथ बाद में सुनाई देने लग जाता है और बोलने लग जाते हैं, पर ज्यादा जो नंबर्स हैं बच्चों में भी और ऑब्वियसली बुजुर्गों में भी, मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट का है, हार्ड ऑफ हियरिंग, हियरिंग एड चाहिए या क्या चाहिए उसमें है, पर जो फुली डेफ हैं या ऑलमोस्ट डेफ हैं उनके लिए कम्युनिकेशन का एक माध्यम साइन लैंग्वेज जितना जल्दी सिखा दी जाए उतना अच्छा है। और खासकर अगर कोई बच्चा डेफ पैदा होता है, उसका बहुत ही अर्ली डायग्नोस्टिक, जो कि देश में बहुत कम हिस्सों में अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता, कई बार 6 महीने तक, कई बार इवन 1 साल तक के बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, और जितना जल्दी हम समझ जाएंगे कि बच्चे को दिक्कत है, जैसे बेरा टेस्ट है और पोर्टेबल बेरा टेस्ट है, ऑल टेस्ट हैं वो आज कई हॉस्पिटल्स में होने लग गए हैं जहां इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं, कि ये टेस्ट जो होते हैं उसमें ये टेस्ट भी शामिल कर लिया जाए, तो जितना जल्दी आइडेंटिफिकेशन होगा उसको फिर बच्चे को शुरुआत में कम साइन लैंग्वेज, बाद में जैसे बच्चा फर्स्ट सेकंड में आता है अच्छे साइन लैंग्वेज सिखाई जाए, कम से कम 1000 शब्द, 2000 शब्द, तो बच्चा फिर मतलब साइन लैंग्वेज देन बिकम्स ए नेटिव लैंग्वेज। पर हमारी कोशिश ये भी है कि साइन लैंग्वेज के साथ साथ जैसे बच्चे 8वीं 10वीं वगैरह में हो रहे हैं, उनको इंग्लिश या हिंदी, जो भी उनकी लैंग्वेज है, वर्नाकुलर है, वो भी लिखनी पढ़नी अच्छे से आए, क्योंकि साइन लैंग्वेज अगर आप सीखते हो तो ठीक है, आप जिनको साइन लैंग्वेज आती है उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन कर लोगे, या हमने जैसे वीडियोस में या एजुकेशनल वीडियो है, एंटरटेनमेंट वीडियोस है, उसमें साइन दे दिया तो वो उसको अच्छे से समझ जाएंगे। पर पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन में आपको एक लैंग्वेज लिखना पढ़ना बहुत जरूरी है। पर साइन लैंग्वेज में भी खूब बढ़ावा मिला है, इवन जैसे अभी कई मूवीज आने चालू हो गई हैं साइन लैंग्वेज के साथ, एजुकेशनल वीडियो साइन लैंग्वेज के साथ आ रहे हैं। आज हमने 3-4 नई लॉन्चेस किया उस संबंध में, और जैसे हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी है, इंदौर डेफ एजुकेशनल स्कूल है, ये एक 2-3 शाइनिंग एग्जाम्पल्स हैं देश में जो बिल्कुल नर्सरी फर्स्ट के बच्चों को भी फुल फ्लैश साइन लैंग्वेज आ रही होती है।
बिल्कुल, आपने सुगम होते हुए माहौल की चर्चा की, और हमने देखा भी इस बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस तरह से एक एक्सेसिबल एंटरटेनमेंट की ओर बहुत फोकस था। अगला मैं जो प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा वो रोजगार और ऐसे अवसरों के संबंध में जिसमें दिव्यांगजनों को स्किलफुल बनाने की ओर सरकार का ध्यान है, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए, उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन के अवसरों को खोलने के लिए किस तरह के विशेष पहल की गई हैं?
देखिए, एक तो हमारा मंत्रालय अभी बार बार ये स्टैंड ले रहा है कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, कि कोई भी दिव्यांगता हो हम बच्चों को एजुकेशन के पूरे साधन दें। उसमें भी आज की डेट में भी हार्डली 5% बच्चे स्पेशल स्कूल्स में, दिव्यांग बच्चे 90-95% चिल्ड्रन आर एक्चुअली गोइंग टू इंक्लूसिव स्कूल्स, जो एक अच्छी चीज है कि जितना इंक्लूसिव स्कूल में बच्चे जाएंगे वो तो बेस्ट चीज है कि वो सभी के साथ मिलकर रहें, सोशल इंटरेक्शन भी हो, और स्पेशल एजुकेटर जो चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए वो उनको प्रोवाइड किए जाएं। अगर वहां नहीं फिट बैठ रहे या कहीं पे भी थोड़ा ज्यादा सीवियर डिसेबिलिटी है, वही बच्चे हम स्पेशल स्कूल्स में लेके आए, चाहे वो ब्लाइंड स्कूल्स हैं, चाहे डेफ स्कूल्स हैं, चाहे आईडी बच्चों के स्कूल्स हैं, और इन सभी को चाहे स्पेशल स्कूल में हो, और हार्डली 1% पॉपुलेशन ऐसी भी रहेगी दिव्यांग चिल्ड्रन में जो बेसिकली होम स्कूलिंग भी करेंगे, तो हम ऐसी भी 2-3 एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं जो होम स्कूलिंग करवाती हैं। बट जितना मैक्सिमम हो वो इंक्लूसिव इंटरेक्शन हो ऐसे बच्चों का, तभी वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। फिर एजुकेशनल कंटेंट है, जैसे एनसीईआरटी बुक्स हैं, सुगम्य पुस्तकालय पे मोस्टली अवेलेबल हैं। फिर हमने ये निर्णय लिया कि ओनली टेक्स्ट बुक्स आर नॉट इनफ, बच्चों को स्टोरी बुक्स भी बच्चों के दिमाग के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आजकल हम ब्रेल में और नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर स्टोरी बुक्स, ऑडियो बुक्स बहुत सारी लेके आ रहे हैं। अब साइन लैंग्वेज में थोड़ा सा कंटेंट की अभी भी कमी है अनफॉर्चुनेटली, और हम कंसेप्ट बेस्ड वीडियो तकरीबन 200-300 रिलीज हो चुके हैं, जैसे न्यूटन के लॉज क्या है, रिगार्डलेस ऑफ क्लास के आप 6ठी में सिखा रहे हो कि 8वीं में सिखा रहे हो, आप कंसेप्ट पूरा साइन लैंग्वेज में बच्चों को समझा दीजिए, और जैसे ब्लाइंड बच्चे उनको ऑडियो ट्रैक अच्छा हो कि वो समझ जाए। और अब नई नई स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं बोथ फॉर डेफ एंड ब्लाइंड चिल्ड्रन, और जो ऑटिज्म वगैरह और आईडी के कुछ बच्चे हैं उनको कई तरह से अलग तरीके से चाहिए, जैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, कई डिसलेक्सिया है, उसके लिए बहुत सारे एनजीओज और स्कूल्स काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा अलग तरीके से कई बार चीजें सिखानी पड़ती हैं। तो एजुकेशन पे हमारा भी बहुत ध्यान है और इसमें बहुत इंडिया में काम हो रहा है, और हायर एजुकेशन में अपने पास अभी 5% रिजर्वेशन भी है कम से कम सरकारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, और जो गवर्नमेंट फंडेड है उसका लाभ भी बहुत बच्चे उठा रहे हैं। एजुकेशन इज ए वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट, और एम्प्लॉयमेंट में भी देखिए सरकारी में 4% रिजर्वेशन है, वो रही बात अलग, असली नौकरियां तो प्राइवेट सेक्टर में या एंटरप्रेन्योरशिप में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। तो उस पर भी देश में बहुत सारी एनजीओज और लकीली कॉरपोरेट सेक्टर भी बहुत बड़े एक लेवल पे आ रहा है साथ में एम्प्लॉयमेंट के लिए।
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा जो उनके पीछे एक हम कह सके कि उनकी सहायता होती है वो सहायक उपकरणों की वजह से होती है, उनके असिस्टिव डिवाइसेस की वजह से। तो ऐसे असिस्टिव डिवाइसेस हर दिव्यांग व्यक्ति को उपलब्ध हो सके, चाहे वो दूर दराज का व्यक्ति हो, गांव-गांव का व्यक्ति हो, तो उन तक ऐसे असिस्टिव डिवाइसेस पहुंचे, इसके लिए सरकार के कुछ प्रयास आप बताना चाहेंगे, और क्या कुछ उपलब्ध करवाया जाता है इस बारे में भी आप बताना चाहेंगे?
इनफैक्ट हमारे डिपार्टमेंट का 1/3 से ऊपर बजट असिस्टिव टेक्नोलॉजीज पे ही है, और मेरा ये बिल्कुल स्ट्रांग कन्विक्शन है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजीज कैन चेंज लाइव्स, एब्सोल्युटली। जैसे अपन ऑर्थोटिक से ही बात चालू करते हैं, जिस बच्चे को कैलिपर्स चाहिए, कैलिपर्स मिल जाए तो बच्चा हर काम कर सकता है, कैलिपर्स नहीं मिले द चाइल्ड एक्चुअली मे बी क्रॉलिंग, द डिफरेंस इज बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। बच्चे को व्हीलचेयर चाहिए अपने साइज की, वो उपलब्ध होनी चाहिए, हम करवा के दे रहे हैं ऐसे एडल्ट्स को भी जो व्हीलचेयर्स वगैरह हैं। फिर प्रोस्थेटिक्स में अगर एम्प्यूटेशन हो गया, एक्सीडेंट में एम्प्यूटेशन हो गया, आजकल लकीली पोलियो इज ऑलमोस्ट गॉन, सीपी जो साइबर पॉलिसी है उसकी संख्या भी कम हो रही है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं और सीजेरियन हो रही हैं काफी डिलीवरीज, लकीली ये दोनों प्रमाण कम हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली देश में एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसलिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी एक्चुअली कई जिलों में बढ़ रही है कुछ ग्रुप्स में। डायबिटिक फुट एम्प्यूटेशन देश में अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा है आज की डेट में, तो ये सब आ जाते हैं प्रोस्थेटिक्स, गुड क्वालिटी एंड रीजनेबली प्राइस्ड प्रोस्थेटिक्स। तो अपने देश में लकीली कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड जो प्राइसिंग है इवन प्राइवेट मार्केट में देश के प्रोस्थेटिक्स का, ऑर्थोटिक्स का, व्हीलचेयर का, लो विजन ग्लासेस का और चीज़ों का, तो ये काफ़ी कम है। काफ़ी संख्या में तो हम दे देते हैं, वो इनकम लिमिट है हमारी स्कीम में, एडिप स्कीम में, उस पर हमने काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई भी किया है। पर मार्केट में से भी जिनको खरीदना पड़ता है उनको इंडिया में प्राइसेस मच बेटर कंपेयर टू आउटसाइड। उसमें हम मेड इन इंडिया की बात भी काफ़ी कर रहे हैं, जैसे आज भी लॉन्च किया IIT मद्रास के साथ मिलकर, कदम आर्टिफिशियल नी जॉइंट लॉन्च किया, मोहाली CSIR के साथ मिलकर हमने लो विजन ग्लासेस और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आज लॉन्च की हैं। मेड इन इंडिया हियरिंग एड्स भी हम नेक्स्ट मंथ मार्केट में आ जाएंगे। इसके अलावा जो कई सॉफ्टवेयर बेस्ड असिस्टिव टेक्नोलॉजी आ रही है, एंड एक्चुअली द बेस्ट एग्जांपल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज अ स्मार्टफोन। खासकर जो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले हैं उनके लिए तो स्मार्टफोन इज ए लाइफ लाइन। तो हम भी अभी 10th के बच्चों को विजुअली इम्पेयर्ड और अभी रिसेंटली हमने कहा डेफ बच्चों को भी देंगे कि स्मार्टफोन का एक स्कीम है। तो नंबर्स उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, फ्यू थाउजेंड्स, क्योंकि बहुत से राज्य सरकारें भी स्मार्टफोन दे रही हैं बच्चों को। कई राज्य सरकारें तो इवन अर्लियर क्लासेस में भी देना चालू करती है। आंध्र प्रदेश में तो उन्होंने इनफैक्ट डेफ और ब्लाइंड बच्चों को फर्स्ट से वो कंप्यूटर सिखा रहे हैं। एब्सोल्युटली हम भी बहुत एनकरेज कर रहे हैं कि जो 10th के बच्चे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं जैसे, कि वो स्क्राइब की बजाय खुद से लैपटॉप पे एग्जाम दें। एंड CBSE इज एक्चुअली दोज रूल्स इन प्लेस एंड मैनी विजुअली इम्पेयर्ड किड्स आर एक्चुअली यूजिंग दैट। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड जब एक 10th क्लास का ब्लाइंड बच्चा या लो विजन बच्चा कहते मैं खुद से लैपटॉप पे पेपर दूंगा, तो ऑब्वियसली वो बच्चे को आगे नौकरी मिलने में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या हायर एजुकेशन में। सो असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, दे आर एब्सोल्युटली लाइफ लाइन एंड दिस इज अ मस्ट।
यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहेंगे। एक सरकार की बहुत सफल पहल रही है और इसमें बड़ी संख्या में ऐसे आईडी कार्ड बनाए गए हैं, इसके फायदे क्या हैं और क्यों दिव्यांगजनों को इसका लाभ लेना चाहिए और अब तक इसका कितना लक्ष्य हम हासिल कर चुके हैं यूनिक आईडी कार्ड का?
देखिए, देश में एक तो बहुत सालों से मैनुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनते रहे हैं और राज्य सरकारें चिन्हित करती हैं कि इस हॉस्पिटल में इन डिसेबिलिटीज का सर्टिफिकेट बनेगा। तो 2016 के एक्ट के बाद से भारत सरकार ने एक SOP जारी किया, क्योंकि 7 से 21 डिसेबिलिटीज भी बढ़ा दी गई थी, कि उनको डॉक्टर्स ने कैसे आइडेंटिफाई करने और कैसे उसका परसेंटेज तय करना है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है। देश भर के डॉक्टर्स की एक्सपर्ट कमेटीज बनती हैं और अभी लेटेस्ट SOP हमने March 2024 में जारी किया सभी 21 डिसेबिलिटीज का, कि कैसे डिसेबिलिटी डॉक्टर डिसाइड करेंगे उसका परसेंटेज, और ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है, उसी लेवल पे रहेगी या इम्प्रूव हो सकता है या ऑल डिटेरियोरेट हो जाएगा, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, 2019 के बाद से थोड़ा कंपलसरी किया गया कि एक सेंट्रल वेबसाइट बनाई गई स्वावलंबन पोर्टल, जिसपे यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड देना चालू किया गया। तो आज की डेट में 1.15 करोड़ डिसेबिलिटी कार्ड दिए गए हैं। पर एक आपके माध्यम से मैं ये दिव्यांगजन को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर डिसेबिलिटी 40% से कम भी है आपकी, 5% भी है, 10% भी है, तो भी आप UDID कार्ड जरूर बनवाइए, क्योंकि आजकल हम भी और कई राज्य सरकारें भी कई लाभ 40% से कम, जिसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोला जाता है, उससे कम दे रहे हैं। सिर्फ जो 4% सरकारी नौकरियां हैं और जो 5% रिजर्वेशन है हायर एजुकेशन में, उसके लिए एक्ट में जरूर लिखा है कि 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जब मैं आंकड़े देखता हूं हमारे 1.15 करोड़ के UDID के, उसमें हार्डली 5 लाख हैं 40% से कम वाले। लोगों में एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि तभी हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लें अगर 40% से ऊपर है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिसेबिलिटी है तो UDID जरूर लीजिए।
संक्षेप में एक छोटा सा संदेश अपने सुनने वालों के लिए आपसे चाहेंगे आज के दिन के अवसर पर, क्योंकि दूर दराज हमारे श्रोता रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं।
मैं खासकर पेरेंट्स से अपील करना चाहूंगा कि लेट अस से इफ ए चाइल्ड इज बॉर्न विद डिसेबिलिटी, तो आप घबराइए मत। हर जिले में पेरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, उनकी भी मदद लीजिए। भारत सरकार और राज्य सरकार की बहुत इकाइयां हैं फैली हुई, उनको संपर्क कीजिए और थोड़े रोल मॉडल्स भी देखिए कि बच्चे को जो भी डिसेबिलिटी हो, कि उसके बावजूद आपको बहुत सारे रोल मॉडल्स मिल जाएंगे कि बच्चे कहां कहां तक जिंदगी में पहुंचे।
बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।